जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण Krishna, Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna. Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Syam Sundara Radha Syam Sundara Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Gaura Nitai Jaya Pancha Tattva Gaura Nitai Jaya Pancha Tattva Gaura Nitai Jaya Pancha Tattva Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jaya Jaya Sudarshan Jaya Jagannath Jaya Baladi, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhava Tumhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Premanandi. Jai Om Vishnupad Paramhans Paribrajkacharya Astotar Sat His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramhans Paribrajkacharya Astotar Sat His Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Iskon BBT Founder Acharya Savior of the Whole World Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Iskon Vartman Acharya Vrind Ki Guru Parampara Ki रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की संवेद भक्त वृंद की योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री श्री कृष्ण वल्लम श्रीमद्भागवतम महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदी All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Guru and Gauranga, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 और अध्याय 15। अध्याय का शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश और आज का श्लोक क्रमांक है 76।
सवा अयम ब्रह्म महद ब्रह्मिज्ञा कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलु मातुलेय आत्मारणीयो वृद्धि कीत गुरुश्च सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च सवा अयम ब्रह्म महद विमिज्ञा कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च
वैष्णवी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य सह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वा या तो अयम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म
परम ब्रह्म महत विमिग्रह बड़े बड़े संत पुरुष श्री कृष्ण भक्त द्वारा खोजे जाने वाले कैवल्य निर्वाण सुख मोक्ष तथा दिव्य आनंद के अनुभूति साक्षात्कार के लिए प्रिय प्रिय सुहृत शुभ चिंतक व तुम सभी पांडवों खलु के रूप में प्रसिद्ध मातुलेय मामा के पुत्र ममेरा भाई आत्मा हृदय तथा आत्मा अर्हनीय अत्यंत पूजनीय विधिकृत निर्देश देते गुरु तुम्हारा गुरु च और अनुवाद। यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपने मुक्ति तथा शाश्वत आनंद की प्राप्ति हेतु ढूंढते रहते हैं, वे तुम्हारे श्रेष्ठ शुभ चिंतक मित्र ममेरे भाई आत्मा पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ऐसे किसी भी व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने हेतु गंभीर हो। श्री भगवान गुरु को इसलिए भेजते हैं कि वह भक्त को प्रशिक्षित करे और जब भक्त प्रगत हो जाए तो श्री भगवान उनके हृदय में रहकर गुरु की भांति कार्य करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे समीप आ सकते हैं। जब तक कोई श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा भली प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हो जाता तब तक भगवान श्री कृष्ण किसी के प्रत्यक्ष गुरु नहीं बनते। अतएव जैसा कि हम पूर्व में ही बतला चुके हैं, श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधि गुरु कभी अपने शिष्य को असत्य ज्ञान नहीं देता, वह केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। भगवान श्री कृष्ण अंदर तथा बाहर से गुरु के रूप में सहायता करते हैं। बाहर से वे श्री भगवान का प्रतिनिधि बनकर और अंदर से साक्षात रूप में परम भक्त से बातें करते हैं और उसे उपदेश देते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके वापस जा सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णवगण हैं और वैष्णवीगण हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो ये श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएँ हैं उनको आज मुझे ये दोहराने का अवसर मिला है और मुझ पे जब आप सब वैष्णव वैष्णवीगण कृपा करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। और साथ साथ मेरे लिए ये कृपा करें जो मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के बहुत ही परम स्नेही शिष्य परम पूजनीय हिज होलीनेस अनंत कृष्ण उदास गोस्वामी महाराज जो यहाँ पे उपस्थित हैं और इतने विनम्र वैष्णव हैं जो मुझ जैसे अधम पतित के मुख से भी आज सुनने के लिए सामने प्रस्तुत हैं और इस शरीर के जन्मदाता पिता भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सभी के श्री चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीष की प्राप्ति करना चाहता हूँ ताकि ये श्रीमद् भागवतों को हम एज इट इज प्रस्तुत कर सके जैसे हमारे आचार्य बोल रहे हैं। तो बहुत ही तो यहाँ पे आज का जो अश्लोक क्रमांक है 76 नंबर वही है माता पिता सब। तो यहाँ पे 76 नंबर अश्लोक है। देखिए ये जो चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का सातवां स्कंद का 15वां अध्याय यानी कि सबसे अंतिम अध्याय चल रहा है और बहुत लंबे समय से आप सब भक्तगण इस अध्याय को श्रवण करते आ रहे हैं। इसमें एक सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य निर्धारित किया गया है। स्वयं भगवान के अवतार नारद जी जो भगवान के भक्ति अवतार है भक्ति शक्ति को लेकर के प्रकट हैं स्वयं नारद जी वो राष्ट्रीय सभा में ये युधिष्ठिर महाराज को ये कथा बता रहे हैं।
और ये आज का श्लोक 76 नंबर, इसका जो क्रम चल रहा है 75, 76 और 77, ये जो तीन श्लोक है ना, इस तीनों श्लोक में भगवान नारद जी पांडव का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। पांडव की क्या स्थिति है उनके बारे में बता रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, भागवतम में 335 अध्याय है। 335 अध्याय में से सबसे बड़ा अध्याय है ये, जिसमें 80 श्लोक है। इससे बड़ा अध्याय पूरे भागवतम में नहीं है। और ये आज 76 नंबर का बहुत ही सुंदर श्लोक जो श्री नारद जी के मुख से ये यहाँ पे उद्धृत हुआ है, सवा अयम ब्रह्म महद विमिज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। देखिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक का कमेंट्री श्रीधर स्वामी भी नहीं किए हैं और हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी इस श्लोक का कमेंट्री नहीं किए हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य स्वयं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर तरीके से यहाँ पर मैं जो हमारे लिए जो टीका दिए हैं वो हम लोगों के लिए निर्धारित करके हमारी बद्ध स्थिति को देखते हुए दिए हैं। प्रश्न ये उठता है, पांडव का इतना ग्लोरिफिकेशन स्वयं गुरुदेव उनके मुख से कर रहे हैं, तो मेरे जीवन में भी मैं एक बात बताना चाहता हूं जो बड़े वैष्णवों के मुख से श्रवण किया है। हमारे गुरुदेव ही झोलिनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के एक परम शिष्य हुए हैं, वो हिजोलिनेस गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज। जब हिजोलिनेस गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवतम पे पूरा का पूरा लेक्चर दिए हुए 48 एपिसोड है, और गौर कथा, ये तो श्रीमद् भागवत कथा और गौर कथा में चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के ऊपर में करीब करीब 40 से ऊपर 42 लेक्चर्स हैं, करीब करीब 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक एक लेक्चर्स हैं। जब इनको लोगों के भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए तो हमारे गुरु महाराज ऐसे शिष्य के लिए अपने वाणी को रोक नहीं पाए, कहे ये जो भक्त है ना एक अनमोल रत्न, दिव्य रत्न को उजागर किए हैं भक्तों के समक्ष। जो आने वाले भक्त या जो प्रस्तुत अभी भक्त वर्तमान में हैं, इन चीजों को जब श्रवण करेंगे ना तो स्वतः उनके हृदय में क्या होगा, भक्ति देवी प्रस्फुटित हो जाएंगी। इतना बढ़िया से व्याख्या किए हैं महाराज, आप लोग श्रवण कीजिएगा, नेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो एक गुरु अपने शिष्य का ग्लोरिफिकेशन कब करता है, जब शिष्य के द्वारा बहुत ही उत्तम भक्ति का प्रदर्शन होता है, उत्तम चीजों का प्रदर्शन किया जाता है, तब जाकर के गुरु के मुख से अपने शिष्य के बारे में निकलता है। ये परम सौभाग्य है। ऐसे ही यहां पर में परम सौभाग्य हो रहा है, जो भगवान नारद जी स्वयं अपने ही शिष्य, यहां पर मैं अपने ही शिष्य जो है ये युधिष्ठिर महाराज का ग्लोरिफिकेशन, पांडव का ग्लोरिफिकेशन करना चाह रहे हैं और हम सब के समक्ष रख रहे हैं, ये बड़ा ही उत्तम है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर मैं बता रहे हैं और शास्त्र भी इसका प्रमाण है, भगवान ने चातुर वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से इस जगत में 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किए। जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी है, उसके बाद गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थी है और सन्यासी है। ये 4 जो आश्रम है, इस 4 आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम बोला जाता है सन्यासी का। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं बताते हैं, ये पांडवगण करे भूरी भागा, इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली है जो इन पांडवों का स्थान इन सन्यासियों से भी ऊपर है। जो सन्यासी इस जगत के गुरु माने जाते हैं, पांडव गणों की स्थिति बता रहे हैं, इन सन्यासियों से भी ऊपर है। इसलिए कितना बड़ा ये सौभाग्य है पांडव गणों के, जो भगवान के साथ हमेशा उठते बैठते खाते पीते रहते हैं। तो सबा अयम महद विमिज्ञ ब्रह्म कैवल्य निर्माण सुखानुभूति, तो कह रहे हैं यहां पर मैं, जो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको बड़े बड़े महापुरुष इस जगत में उनका अन्वेषण करते रहते हैं, उनको प्राप्त करने का अन्वेषण करते रहते हैं। और जो भगवान क्या है, हमेशा माया से मुक्त रहते हैं, माया का लेस मात्र भी ऐसे भगवान को टच नहीं कर पाता है। और वो भगवान जो इस जगत में कैसे विराजमान है, परम शांत और परमानंदानुभव के रूप में, इस स्वरूप में भगवान यहाँ पर में विराजित हैं। और ऐसे परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय जन कौन है, ये पांडव। तो यहाँ पर में चार पांच संज्ञा दिया गया है पांडवों के बारे में, पांडव के लिए बोल रहे हैं, जो ये पांडव भगवान के प्रिय हैं, ये पांडव भगवान के हितैषी हैं, ममेरे भाई हैं और पूज्य आज्ञाकारी गुरु हैं तथा आत्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण पांडवों के आत्मा तक हैं, समझ रहे हैं, इसको हम आगे व्याख्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहां पर मैं पहला ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं जो साधक भगवान की कृपा पाने की पूर्ण इच्छा एवं पूर्ण प्रयास करता है ना, उसको जरूर भगवान प्राप्त होते हैं। इसके लिए भागवतम भी प्रमाण है, सब कुछ प्रमाण है। तो ऐसा पांडवों की स्थिति कैसे इस जगत में इतना जग जाहिर हुआ, और पांडव अपने आप को कैसे इस जगह पे प्रतिस्थापित कर पाए, इसके लिए तो कुछ उन्होंने किया होगा ना, वैसे तो नहीं प्राप्त हुए, उनके ममेरे भाई हैं और उनको ज्यादा आदर सत्कार कर रहे, ऐसी तो बात है नहीं। उनकी योग्यता, पांडवों ने ऐसी योग्यता प्राप्त की होगी तभी तो पांडव गण को सन्यासियों से भी उच्च कोटि के और भूरी भागा इतना अत्यंत भाग्यशाली संबोधन कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अपने जीवन में लाना। शुद्ध भक्ति जिस व्यक्ति में, जो सकाम भक्ति नहीं, निष्काम प्रेमा भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो उत्पन्न कर लेता है ना अपने हृदय में, वो व्यक्ति जो है ना भगवान का सबसे प्रिय सुहृद हो जाते हैं। तो ये सब के सब जो गुण, ये पांडवों में एक से एक गुण यहां पर में पांडवों में उपस्थित है। इसका प्रमाण आप देखिए भागवतम के प्रथम स्कंद के दसवां अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहां पर में सूत गोस्वामी पाद एक बहुत ही सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं, जो पांडव गण का कैसा संबंध भगवान के साथ था ये चीज बता रहे हैं दसवां अध्याय का 11 और 12 नंबर श्लोक में। तो चार लाइन का श्लोक है, उसका मुझे अंतिम लाइन से मतलब है, उस अंतिम लाइन में बोल रहे हैं दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजने। प्रथम स्कंद का दसवां अध्याय का 11 और 12 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, जो ये पांडव गण भगवान से किस तरह से अटैच थे, किस तरह का संबंध स्थापित कर रहे थे, तो यहां पर मैं आचार्य बता रहे हैं हम सब जो साधक गण हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान के साथ, गुरु के साथ, या जो भगवान के बहुत ही ग्रेटेस्ट जो वैष्णव हुए हैं, शुद्ध वैष्णव हुए हैं, उनके प्रति हमारी आसक्ति जागृत करनी चाहिए। और वो आसक्ति कैसे जागृत होगी, तो पहला चीज बता रहे हैं दर्शन। हमें बार बार भगवान के शुद्ध वैष्णवों का दर्शन करते रहना चाहिए, भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए। तो दर्शन का मतलब होता है जो भक्तों को हमें इस चमड़े की आंख से देखना, या दर्शन का एक मतलब ये भी होता है जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना, ऐसा व्यवहार में लाना, अक्षर सह पालन करना। और दूसरा चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पर्श। पांडव गण भगवान के स्पर्श कर पाते थे क्योंकि ज्यादातर समय पांडव गण के घर में ही, पांडव के घर में ही कौन रहते थे? भगवान। अपने द्वारका नगरी को छोड़ करके, अपने प्रेयसी को छोड़ करके भगवान ऐसे सुहृद भक्तों के घरों में छुप करके रहा करते थे, जो प्रभुपाद जी यहां पर यूज करें तो कह रहे दर्शन हो ही रहा है और स्पर्श हो रहा है। तो पद्म पुराण में कह रहे हैं जो अगर वैष्णवों का गात्र स्पर्श, अगर वैष्णवों का स्पर्श होता है, वैष्णवों का सद्य दर्शन होता है, तो वो एक अदृश्य रेज जो है ना उनके शरीर से, उनके दिव्य कांति से निकलता है, जो मुझ जैसे बद आत्मा में भी आकर के, बद शरीर में भी प्रसार आकर के मिलता है, जिससे हमारा शरीर जो ये पापमय शरीर है ना ये भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है दर्शन स्पर्श करने से। तीसरा जो संबंध बता रहे, कह रहे संलाप। तो संलाप का मतलब होता है परस्पर बातें करना। भगवान के वैष्णवों गण शुद्ध भक्तों के साथ हम जब अटैचमेंट करेंगे, आसक्ति करेंगे, तो उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे, कोई प्रश्न होगा उनसे पूछेंगे, जिज्ञासा करेंगे विनम्रता पूर्वक, तो वो बताएंगे। उनके साथ हमें संबंध प्रगाढ़ करना है। जीवन में भक्ति में अगर आगे बढ़ना है ना तो किसी न किसी एक शुद्ध वैष्णव का धोती पकड़ना है हमें। धोती पकड़ने का मतलब ये नहीं होता उसके धोती पकड़ को रखो, मतलब उनके फुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्योंकि वो जो शुद्ध वैष्णवगण है, वैष्णव है, वो अपने गुरु की बातों को मान करके भगवान की आदेशों को पालन कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का हम पूर्ण शरणागत अगर हो जाते हैं ना तो हमारा बेड़ा पार है, हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करना पड़ेगा। महाजनो येन गतः सपन्था, ऐसे भक्त के चरणारविंद में बने रहेंगे, उनका आदेश पालन करते रहेंगे, कुछ नया चीज इन्वेंशन नहीं करना है हमें। हम भगवत धाम को चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर मैं जो संलाप, उनसे बातचीत करते रहना। और चौथा शयन। जब भक्त को, जो भगवान के शुद्ध वैष्णव, कभी कभी गेस्ट के रूप में जब आप ऐसे वैष्णवों को अपने घर में रखोगे तो क्या होगा, जहां पे वैष्णव शयन करेंगे ऐसे वैष्णव, आप भी उनके बगल में जब आप शयन करोगे तो उससे क्या होगा, एक साथ जो शयन होता है तो ऐसे दिव्य जो भक्त हैं भगवान के उनसे जो है ना बहुत असर पड़ता है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। ऐसे वैष्णवों का जब हम संगति करेंगे, ऐसे वैष्णवों के साथ उठेंगे बैठेंगे रहेंगे बातें करेंगे, तब जाकर के उनका गुण हमारे अंदर में ऑटोमेटिक आएगा। नहीं भी वो बताएंगे ना तब भी आएंगे, और वैष्णव इतने दयालु होते हैं ऑटोमेटिक बताते रहते हैं, समझ रहे ना। तो ये चीज हो रहा है, यही चीज पांडव भगवान के साथ, जब भगवान उनके साथ रह रहे हैं तो अर्जुन उनके घर में सहन कर रहे हैं। कभी जब भगवान यहां नहीं रहते थे हस्तिनापुर में, तो यहाँ इंद्रप्रस्थ में, तो स्वयं अर्जुन चले जाते थे, छह छह महीना, सात सात महीना अर्जुन वहां पर में रहते थे और भगवान के साथ विराजित रहते थे, भगवान के साथ खेलते उठते बैठते सब कुछ करते थे, कहीं भी जाते थे भगवान अर्जुन को ले जाते थे, सुहृद सखा। तो ये रिलेशनशिप हमें भक्तों से डेवलप करना है। डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर में शुद्ध भक्ति ऑटोमेटिक आएगा। भगवान पांडव को, ये खास करके अर्जुन को इतना प्रेम करते थे। एक बार की बात है, द्वारका में अर्जुन शयन कर रहे थे और शयन कर रहे थे, कह रहे थे जो अर्जुन इधर प्रसाद का टाइम हो रहा था तो बोले सत्यभामा को, आप जो है ना थोड़ा अर्जुन जी को जगा दीजिए और लेकर के आइए। तो कह रहे हैं अर्जुन के बगैर हम प्रसाद ले नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। तो कह रहे अर्जुन को, तो ठीक है बुलाते हैं। तो फिर जब गए तो कह रहे आपको इतना अर्जुन से प्रेम क्यों है, तो अच्छा इसकी टेस्टिंग चाहिए आप लोगों को। तो कहे ठीक है आ जाओ मेरे पास। तो भगवान के साथ सब मिल करके जिस अर्जुन जिस कक्ष में सो रहे थे, अर्जुन को कहे उनके शरीर में आप कान लगाओ। तो जब अर्जुन के शरीर में कान लगाया गया तो उनके सोए हुए अवस्था में अर्जुन के शरीर से कृष्ण 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 हो रहा था आवाज। तो जो व्यक्ति जो साधक सोए हुए अवस्था में अपने आराध्य उपासक का इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, नित्य निरंतर नाम ले रहे हैं, ऐसे ही हमारे आचार्य गुरु हैं। जो श्रील प्रभुपाद, एक बार ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के बारे में भी कई भक्त बोले, श्रील प्रभुपाद आपको तो कभी नाम जप करते हुए नहीं देखता हूं, तो आप अपना माला कैसे पूरा करते हो? तो घरे आकर के देखो मैं कैसे माला पूरा करता हूं। तो देखे भक्त, टेस्ट किए, उनके पीठ में कान लगाए तो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण हो रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला 64 माला की क्या बात है। जो ऐसे महापुरुष हैं श्रील प्रभुपाद, जो भूतो न भविष्यति, जो अगले 10,000 साल में ऐसे आचार्य आना नामुमकिन है। तो ये आचार्य सोते जागते नित्य निरंतर 24 आवर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो आज हम उन्हीं के बोट में बैठे हैं। तो हमारा ये परम सौभाग्य तब तक रहेगा सौभाग्यशाली, भूरी भागा हम लोग भी भूरी भागा हैं। पांडव जैसे भूरी भागा हैं, वैसे हम लोग भी भूरी भागा हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद के बोट में हैं, प्रभुपाद के अंदर में रह करके भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भूरी भागा तब तक रहेगा जब तक हम प्रभुपाद के शरण में रह करके भगवान की भक्ति करते रहेंगे। जिस दिन हमारा मन छिटका और हम प्रभुपाद के दायरे से अलग हुए ना, उसी दिन हम भूरी भागा का जो ये लेबल लगा हुआ है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए एक साधक की यही बनता है, जो हमारी आसक्ति किसी आचार्य में, किसी शुद्ध वैष्णव में होना चाहिए, तभी होगा। शयन करें आसन, आसन का मतलब होता है एक साथ बैठना, नहीं भगवान के साथ वैष्णवों के साथ एक साथ बैठना। और फिर करें भोजने, भोजने का मतलब होता है उस वैष्णव को अपने घर में बुला करके भोजन दीजिए, प्रसाद दीजिए उनको, और साथ साथ प्रसाद पाइए, संभव हो तो उनका उचित प्रसाद मिल जाए तो और बहुत उत्तम। तो ये 6 जो काम है ना, ये 6 काम के थ्रू से हमारे अंदर में भगवान के प्रति, जब भगवान के भक्तों के प्रति हमारी इतनी उत्कट इच्छा रहेगी उनके साथ भक्ति करने का, उनके साथ इतना प्रेम बढ़ाने का, संबंध बढ़ाने का, जब तक भगवान का या भगवान के भक्तों के साथ हमारा गाढ़ संबंध नहीं होगा ना, तो हम फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम हमें केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं जो मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकूं। हमें भगवान के शुद्ध वैष्णवों की सेवा में अपने आप को जब नियोजित कर लेंगे ना, तो इसके थ्रू से हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहां पर मैं बता रहे हैं, जो साधक भगवान की कृपा पाने की इच्छा चाहता है ना, पूर्ण इच्छा और गंभीर भक्त है, पहला ही लाइन बोल रहे हैं, पाने की, उनकी कृपा पाने की में गंभीर हो, ऐसे गंभीर साधक जो है ना भगवान की भक्ति करने के लिए, उसमें एक लालसा होनी चाहिए, लौल्यम होनी चाहिए। देखिए भगवान को प्राप्त करने का एक ही सबसे बड़ा टूल्स है, कोई और चीज प्राप्ति नहीं कराएगा भगवान का। तो इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद पद्यावली ग्रंथ में एक श्लोक उद्धृत करते हैं, उसमें बता रहे हैं भगवान को प्राप्त करने का तरीका। कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए उन्होंने दिए हैं बहुत ही सुंदर श्लोक, और वो बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। देखिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, हमें बनना कैसे है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, हमारे अंदर में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस ऐसा उदित हो, इसके अलावा कुछ और नहीं।
और इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा श्लोक भगवत गीता का दसवां अध्याय का दसवां नंबर श्लोक कोट कर रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते ददामि बुद्धि योगं तं बुद्धि योग ददामि भगवान हमें ददामि बुद्धि मुझे हम लोगों को देते हैं क्या बुद्धि योग यानी कि भक्ति कृष्ण भाविता रस मती कृष्ण भक्ति रस भाविता मती हमें भगवान के द्वारा प्राप्त होता है किसको तेसाम सतत युक्तानाम जो भक्त जो साधक वो सतत युक्तानाम सतत युक्ता का नाम कर सतत युक्ता नाम युक्त मतलब अटैच होना सतत नित्य निरंतर वो व्यक्ति जो है सतत रहता है प्रयास करता रहता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तो करे भगवान की कृपा कभी मिलेगी लौल्यम अपि एकम मूल्यम करे भगवान की भक्ति उस साधक को प्राप्त होता है जिसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की लालसा पूर्ण इच्छा पूर्ण डिजायर हो अगर इच्छा ही नहीं रहेगा लालसा ही नहीं रहेगा ना तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद अगर लालसा ये जो लोभ है ना भगवान को प्राप्त करने की अगर आपको बाजार में कहीं खरीदने से भी मिल रहा हो ना और अनंत धन दे करके भी उसको प्राप्त कर सकते ना तो ऐसे लौल्यम को खरीद लेना चाहिए। तो हम सबके हृदय में अगर भगवान को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई हो जाएगी ना तो हम भगवान को अनन्य प्रेम करेंगे अनन्य प्रेम भक्ति से आप्लावित होकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान नारद जी भक्ति सूत्र में एक सूत्र बताते हैं वो सूत्र ये है सातवश्विन परम प्रेम रूपा हमें भगवान के साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए। करें भक्ति के अनेक प्रकार हैं इस जगत में है ना भक्ति कई तरीके से हमें करने के लिए दिया गया है लेकिन जो नारद जी जिस भक्ति का संबोधन कर रहे हैं करें हमें भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम स्वरूपा भक्ति को जागृत करना है और अनन्य का मतलब वो बता रहे हैं जो अनन्य ज्ञान कर्मादि शून्य अनाभ ये ज्ञान कर्मादि से अनावृत होना चाहिए और अन्याभिलाषा शून्यम ये किसी भी तरह की अभिलाषा मन में नहीं होना चाहिए ज्ञान कर्म आदि से ऐसे साधनों के आश्रय से हमें रहित होकर के केवल और केवल भगवान में स्पृहा होनी चाहिए और हमारा चित्त जो है ना अनन्य भाव से भगवान को प्राप्त करने का भगवान को सेवा करने में हमारा जो है मन चित्त जो है लगा रहना चाहिए और इसके विपरीत हमारा हृदय जो है ना इस जगत के पदार्थों से जगत के सुख से ममता से रिलेशन जो ये जागतिक जो रिलेशन है ना ऐसे रिलेशनों से हमारा जो है ना आसक्ति दूर रहना चाहिए हमें अनासक्त रहना चाहिए और जितने भी पदार्थ हैं इस जगत में जितने रिलेशन हैं उनको नजरअंदाज करके अलग करके केवल और केवल अपने हृदय में भगवान को प्राप्त करने की उत्कट जो लालसा है और नित्य निरंतर भगवान के लिए हमें पूजा आराधना उनके नामों का रूप गुण लीला का नित्य निरंतर स्मरण करना केवल और केवल अनन्य न अन्य अनन्य का मतलब होता है न अन्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं हमें बॉस बनाना है अपना मेंटर बनाना है तो भगवान को बनाना है भगवान श्री कृष्ण को बनाना है न कि किसी देवी देवता को न कि किसी और प्राकृतिक जगत के बॉस को। कई लोग क्या करते हैं बॉस बना जब नौकरी करते हैं तो बॉस बनाते हैं अपने जो जिसके यहां नौकरी करते रहते हैं ये सब टेम्पोररी बॉस है। हमारा जो बॉस है मेन जो स्वामी है वो हमें भगवान श्री कृष्ण को उनकी अध्यक्षता में उनके अंडर में रह करके और गुरु के निर्देशन में हमें शुद्ध निष्काम प्रेमा भक्ति को प्रेमा भक्ति स्वरूप को हमें जागृत करना है। तो इसके लिए भगवान गुरु के द्वारा जो निर्देशित जो आज्ञा है गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस है शास्त्रों में जो भगवान हमारे लिए जो निर्धारित किए हैं जिस नियम को उसको अक्षर से पालन करेंगे ऐसा नित्य निरंतर भगवान के श्री चरणों में अपना प्रेम जो है प्रेम प्रकट करेंगे तब जाकर के जो है ये भक्ति प्रेम स्वरूपा भक्ति है। और ऐसे प्रेम स्वरूपा भक्ति को जब हम जागृत कर लेंगे हृदय में तो उस भक्ति के बाद क्या होगा तो नारद जी फिर से एक श्लोक बोले करे वो अमृत स्वरूपा छ। वो जो प्रेम भक्ति जब हम भगवान के लिए प्रकट करेंगे ना केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने की लालसा ऐसा क्या होगा अमृत स्वरूपा ये अमृतमय हो जाएगा। अमृतमय कैसे होगा भगवान के भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है वह सबसे अधिक मधुर है। जिसको यह प्रेमामृत मिल जाता है ना उसे पान करके वह व्यक्ति अमर हो जाता है वो भक्त अमर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लौकिक वासना में लग जाएंगे ना तो वही मृत्यु है। लौकिक वासना हमारी मृत्यु है और भगवान में प्रेम उत्पन्न करना यही अमरत्व को प्राप्त करा देता है। ये भगवान नारद जी हम लोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम शिक्षा प्रस्तुत किए हैं जिसे करके हम सब जो है ना आराम से भगवत धाम जा सकते हैं। तो कह रहे देखिए इसका चश्मदीत गवाह है किन किन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है ऐसे भागवतम में अनेक है। अनन्या प्रेम भक्ति भगवान के श्री चरणों में उत्पन्न करके सारी की सारी ब्रज की गोपियां भगवान को प्राप्त कर लिए। भगवान के जितने भी बड़े वैष्णव हुए हैं देखिए बड़े बड़े आचार्य सभी भगवान को प्राप्त किए हैं और भगवान जिनको माता पिता के रूप में सिलेक्शन किए हैं उनमें ग्रेटेस्ट जो माता है वो माता यशोदा। माता यशोदा कह रहे हैं अधोक्षस भगवान अध्यक्षज भगवान जो इंद्रियों के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते इंद्रियों के द्वारा भगवान को पकड़ नहीं सकते ऐसे भगवान में प्रेम उत्पन्न करके उनको प्रेम की रस्सी से माता यशोदा ने बांधा। बांधा कि नहीं अभी जो कार्तिक मास गुजरा है माता यशोदा भगवान के अनन्यतम वैष्णवियों में से एक है। माता तो है ही है लेकिन भगवान को इतना प्रेम करते हैं जो कह रहे हैं जो भगवान के लिए जब भगवान की बहुत उलाहना आ रही थी ना गोपियों के द्वारा तो माता यशोदा ने सोचा जो आखिर ये हमारा लल्ला हमारे पास 900,000 गायें हैं सुपीरियर गायें हैं जो पद्म गंधा जैसी दूध देती है जो इसमें सुगंध निकलता है वो विशेष प्रकार के घास खाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं 900,000 गाय जो नंद बाबा के पास था ना उसमें से 12 करीब गाय ऐसा था जो पद्म गंधा दूध देता था इस तरह का और विशेष घास उसको खिलाया जाता था उसका जो रस निकलता था दूध वो एकदम सुगंधित होता था। उस दूध को जमा करके माता यशोदा ने तड़के सुबह में 3 बजे भोर में जग करके दीपावली की रात्रि को और भगवान के लिए मक्खन तैयार कर रहे हैं और दूध गर्म कर रहे हैं और पूरा का पूरा सज धज करके भगवान को तैयार कर भगवान के लिए बना रहे हैं और भगवान के लिए लीलाओं को गाना गा रहे हैं और भगवान को प्राप्त उसकी लीला में एकदम मग्न है। और इस तरीके से जब प्रयास कर रहे हैं उसके बाद जब भगवान को थोड़ा सा जो है जब निद्रा टूटा निद्रा भंग हुआ तो माता के गोदी में आए माता के गोदी में जब उनको स्तन पान कर रहे थे तो देखे माता जो ये दूध उबल रहा है और दूध उबलते हुए दूध को बचाने के लिए माता यशोदा ने इतने सुंदर लल्ला को धरती पे रख करके चले गए दूध को बचाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं ये 2 टके की दूध को बचाने के लिए माँ अभी गई है बचाओ मैं पर गोलोक वृंदावन धाम को छोड़ करके यहाँ पर मैं मक्खन दूध खाने माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए आया मुझे धरती पे पटक करके चले मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा दिखाता हूँ अभी ये 2 टके की दूध जो बचाने के लिए गई है ना अब मैं पुराना मक्खन खाऊंगा बीमार पड़ूंगा मथुरा के जेल में जाकर के हमें भर्ती कराना पड़ेगा 2 रुपये बचाने के लिए हमें 200 रुपया खर्चा होगा 2,000 रुपया खर्चा होगा इतना कर। तो भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध आने से भगवान ने क्या किया जो इसके पत्थर के टुकड़ा से जो है ना शिला पुत्र से जो है घड़ा को ऐसे फोड़ दिए, पूरा का पूरा मक्खन बह गया। और भगवान जब देखे माता आ रही है, उससे पहले भाग लेते हैं और भगवान चले गए दूसरे रूम में, कमरे में छुप करके कुछ बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ खुद माखन खा रहे हैं, ऐसे करते हुए और डर भी रहे कहीं माता ना आ जाए। और जब माता जब देखी एक बड़ी सावधानी से इन्होंने तोड़ा है, तो क्या ये बड़ा ही ज्ञानवान है हमारा पुत्र, तो क्रोध भी हो थोड़ा सा, एक छड़ी ले लिए और अपने पुत्र को ढूंढते हुए अपने गए। माता ने ढूंढते ढूंढते उनको पता चल गया, भगवान तुरंत उखल से कूद करके भागने लग गए। भागते भागते माता बहुत परेशान हुई, सुबह से लेकर के बहुत देर तक भागती रही। जब भगवान ने देखा माता के शरीर से जो है ना पसीना आ रहा है, तो इतने समय तक ये माता यशोदा क्या सोच रही थी, आज मैं किसी न किसी तरीके से इसको मैं बांध करके रहूंगी, क्योंकि ये बहुत लंपट हो गया है और आगे लंपटता करेगा ना, तो आज तो ये लोगों के घर में चोरी कर रहा है, कल होकर के किसी लड़की का अपहरण करेगा, किसी को लेकर के भागा के चलाए तो मेरा का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए इसको तारण करना बहुत ही जरूरी है। तो माता यशोदा ने इसलिए उनको पकड़ने का बांधने का प्रयास कर रही है। और उनको भगवान जब देखे, ये भगवान की जो शक्ति है ना अनंत शक्ति है, भगवान को बांधने नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो अनंत शक्ति जब देखा माता बहुत ज्यादा जो है परिश्रम कर रही है। अब परिश्रम करते करते भगवान को पकड़ लिए और भगवान को पकड़ करके उनको रस्सी से बांध रहे हैं। जब रस्सी का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो दुई अंगुल रस्सी जो है ना छोटा पड़ जाता है, दुई अंगुल फिर से रस्सी लाए, फिर जोड़े, फिर छोटा दो अंगुल, फिर से छोटा दो अंगुल, ऐसे कई रस्सियां आ गई, लेकिन वो दो अंगुल का दो अंगुल छोटा ही रह गया। तो यहां पर मैं आचार्य बताते हैं, भगवान यहां प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, जो हमें भगवान को प्राप्त करने का ना अपने तरफ से 100% प्रयास होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए हमें जो भगवान हम पे कृपा करेंगे। अधीर नहीं होना चाहिए, शरणागति का यही लक्षण है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासे। ये जो रक्षिष्यति इति विश्वास हो गोप तृप्ते वर्णम तथा कार्पण्य दोषो स्वभाव षड विधा शरणागति, ये छह तरीके से जो शरणागति है ना, इसमें रक्षिष्यति इति विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमें जरूर प्राप्त होंगे। एक साधक के हृदय में ये जो लीला को जब हम श्रवण करते हैं, तो एक साधक को यही बल मिलता है। जब माता यशोदा भगवान को प्रेम की रस्सी के बंधन में बांध सकते हैं, तो हम सब साधक भी भगवान को बांध सकते हैं। लेकिन हमें भी लौल्यम एकम इमूल्यम, हमें लालसा उत्कट जागृत करना पड़ेगा और आचार्यों का शरणागत होकर के, शास्त्रों का शरणागत होकर के उस तरह की भक्ति करेंगे, प्रेम स्वरूपा भक्ति, तो जाकर के हम भगवान को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो माता इतना प्रयास कर रही थी, तो सारी की अनंत शक्तियां अब जो है ना थम गई, क्योंकि भगवान की एक सबसे सुपीरियर शक्ति है कृपा शक्ति, कृपा शक्ति जागृत हो गई, जो कह रहे हैं स्वमातु स्विंगात्राय निस्रस्त कबर स्रज दिष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सेत स्वबंधने, करे दिष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण माता के बंधन में कब बंधे, देखे माँ बहुत परिश्रम कर रही है, जब माँ को इतना ज्यादा परेशान किए बंधन में आने के लिए, तो हम सब कौन से खेत के मूली हैं, क्या आराम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, लग रहा है बिना साधना किए, बिना भक्ति किए, बिना तपस्या किए हुए हमें भगवान प्राप्ति हो जाएंगे, भगवान क्या अरे गहरे नथु खेरे हैं जो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करना है, कठिन तपस्या कैसे करना है, एकादशी का व्रत करना है, अपने आचार्यों का जो निर्देश है ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करके भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करना है, आचार्यों के द्वारा जो निर्देश किया गया है उसको अक्षर से पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, इन सब चीजों को भक्तों की सेवा करना है सुबह से लेकर शाम तक, 2 बजे सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक भगवान की नित्य निरंतर सेवा में अपने आप को लगा करके रखना है। और इस तरह की भगवान की भक्ति, जो अनन्य भक्ति, भगवान के लिए केवल और केवल भक्ति, जो मेरे जिंदगी में केवल और केवल यही भगवान श्री कृष्ण है, कोई और नहीं है, ऐसा डिवोशन भगवान के प्रति होगा तभी जाकर के ये भगवान हमें प्राप्त होंगे। इसलिए गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं देखिए, पांडव गण, पांडव जी हैं भगवान के सुहृद हैं, प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का व्यवहार पांडव ऐसा करते थे। ये जो युधिष्ठिर महाराज का राज्य था ना, तो देखा जाए तो एक तरह से युधिष्ठिर महाराज का राज्य नहीं था, भगवान श्री कृष्ण का राज्य चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर कभी भी एक काम भी भगवान कृष्ण के आदेश के बगैर, उनकी अनुशंसा लिए बगैर कुछ भी नहीं करते थे। इसका मतलब किसकी राज्य चल रहा है? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए जैसे युधिष्ठिर महाराज एक गृहस्थ की भूमिका में होकर के अपनी गृहस्थी को निभा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा भक्ति जो सेंटर में भगवान श्री कृष्ण को रखे हैं, तो हम भी एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, आप सब मैक्सिमम लोग गृहस्थ हो, तो गृहस्थी में रह करके हमें घर में अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना है, हमें सर्वे सर्वा इस घर का मालिक भगवान श्री कृष्ण को, श्रील प्रभुपाद को समझ करके, उनका शरणागत हो करके हमें भक्ति करना है, और उनकी आराधना में उनके आदेशों को पालन करते हुए जैसा बोलें उस आदेशों में जब हम रहेंगे तो हम सब भी भगवान के वही कृपा पात्र बनेंगे जो पांडव प्राप्त कर रहे हैं। ये अनन्या प्रेमा भक्ति हमें अपने अंदर जागृत करना है। तो ये कह रहे हैं जो ये पांच तरीके से प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय है ना, और सबसे ज्यादा सुहृद है, सुम चिंतक है। भगवान हमेशा पांडवों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं योजना बनाते थे, आप लोगों को पता है महाभारत। एक बार की बात है, कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था, उस अस्त्र पे अश्वसेन नाम का एक अश्वसेन था। अश्वसेन आप लोग क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ जब बन रहा था ना, खांडव प्रस्थ, वहां का जो एक अश्व बदला लेने के लिए क्या किया, ये कर्ण के बाण में, तर्कस में जाकर के कर्ण के बाण के ऊपर सवार हो गया, और उस बाण को जब कर्ण ने छोड़ा था तो भगवान को ये बात पता था केवल केवल, वो अगर ये छोड़ा हुआ बाण जो है ना, ये कर्ण के द्वारा छोड़ा हुआ बाण अगर अर्जुन को लग जाता ना, तो फिर अर्जुन फिर जिंदा नहीं रह पाते। भगवान ने क्या किया, इतने सुहृद है भगवान, भगवान ने अपने प्रहार से, पैरों के प्रहार से रथ को एकदम डाउन कर दिया, और डाउन जब हुआ तो जो कर्ण के द्वारा छोड़ा हुआ तीर था वो अर्जुन के मुकुट को लगा, और मुकुट नीचे जमीन पे गिरा, और मुकुट में जब लगने से मुकुट काला पड़ गया, इतना विषैला था ये अश्वसेन। तो वो अर्जुन को क्या होता, समझ सकते हैं आप, क्या क्या नहीं किए ये अर्जुन की पांडव को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही जब भक्त, एक साधक भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमा भक्ति करता है ना, तो भागवतम इसका प्रमाण है, जो भगवान कृष्ण भक्त के साथ छाया के रूप में चलते हैं और हर पल हर क्षण भगवान उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए हमें वो प्रेम भगवान के लिए जागृत करना है जो प्रेम हमने इस दुनिया को दे रखा है। दिल तो एक ही है ना, ये हृदय एक ही है, तो इस हृदय को वहां ना दे करके हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है, और समर्पित करने ये जब प्रेम उत्पन्न कर लेंगे तो हमें भगवत धाम जाने में कोई भी रोक नहीं सकता। इसी वाणी से हम अपने वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा, हमारे मुख से बहुत गलतियां हुई होंगी तो उसको क्षमा करिएगा। वांछा कल्प तरुभ्यः कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, किसी का कोई प्रश्न होगा तो पर्सनली पूछ लीजिए।